हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो ये स्थान जो बैठे हम लोग वो ठाकुर भक्ति विनोद जी का घर है। इस जगह का नाम स्वानंद सुखदा कुंज है। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि स्वानंद सुखदा कुंज, ये जो नाम है ये भगवान की जो प्रिय सखी है ललिता देवी, इसका गौलोक धाम में जमुना किनारे जो कुंज है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। तो ललिता देवी का जो खुद का घर का नाम है वही नाम ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने घर को दिया है। और ये धाम, ये जो उनका घर है वो जलांगी नदी के किनारे में है। अभी इसका नाम है गो द्रुम, इसका अर्थ है गो यानी गाय, द्रुम यानी पेड़ वृक्ष, कल्प द्रुम यानी कल्प वृक्ष। यहाँ पर जो इंद्रलोक की गाय है सुरूबी गाय, वो बड़ी भगवान की भक्त है। आप जानते हैं उसकी लंबी कहानी है, अभी यहाँ नहीं बताएंगे उसको। जब इंद्र ने वर्षा की थी, भगवान ने गिरिराज को उठाया, तो इंद्र फिर होश में आ गए, फिर पश्चाताप किया, भाग गए यहाँ वहाँ, सब ने उनको धुतकार दिया। तभी इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो कहाँ गए, सुरूबी के पास गए। उसके गुरु ने उनको बताया कि तुम्हारा उपाय मेरे पास नहीं है, एक ही उपाय है, गाय का शरण लोगे, गाय भगवान को बड़ी प्रिय है, उसकी बात मानेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो इतने बड़े देवेंद्र जो है वो गाय के पास गए, उसके चरण पकड़े उन्होंने, बोले कुछ करो मेरे लिए, गाय बड़े दयालु है, वो भगवान के पास ले गई उनको। उन्होंने सिफारिश की, तब इंद्र की सुनी गई, इंद्र को देखा गया पहली बार, इंद्र को माफ़ कर दिया गया। वो सुरूबी गाय इस क्षेत्र में उसके बहुत पहले आई थी और इस क्षेत्र का महिमा देखते हुए वो यहीं बस गई। ये बहुत इंद्र की लीला करने के बहुत पहले का समय है। और यहाँ पर सुरूबी गाय ने तपस्या की है और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य भी किया है, इसलिए गोद्रुम इसको नाम दिया गया है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सुरूबी गाय ने, गौ माता ने यहाँ पर तपस्या की है और जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, इसलिए इसका नाम है गोद्रुम धाम। उसी जगह पर एक कुंज है, उसका नाम है सुरूबी कुंज। वो सुरूबी कुंज इतना सुंदर धाम है कि जब भगवान ने कृष्ण के रूप में उतार, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में उतार लिया, तब उनके बड़े भाई बलराम जी ने भी अवतार लिया नित्यानंद प्रभु के रूप में। बलराम जी का अवतार है नित्यानंद प्रभु, वो भी पहले हल और मुसल चक धारण करके आते थे, गदा धारण करके, कुछ धारण नहीं किया इस अवतार में, हाँ केवल कृपा और दया लेकर आए वो, और सबका हृदय परिवर्तन किया। पहले राक्षसों को मारते थे, अभी राक्षसी हृदय को परास्त करते हृदय को भक्त बना लेते। तो वो बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण दोनों भाई यहाँ पर आए, तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार है उन्होंने यहाँ पर नामेर हाट शुरू किया, यानी कि भगवान के नाम बांटने का मार्केट शुरू किया। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया एक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है नदिया, और गोद्रु में यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने अपने नाम, भगवान के नाम को बांटने का हाट यानी बाजार लगाया। और क्या कीमत लगाई उसकी, जिसके आंखों में एक बूंद आंसू आती है, आंसू आता है भगवान के प्रेम से, उसको ही कृपा मैं देने को तैयार। ठाकुर बड़े भक्ति विनोद जी कहते हैं कि मैं उनका दलाल हूँ, मैं पकड़ पकड़ लोगों को लेके आऊँगा नित्यानंद प्रभु के चरणों में, और दलाली भी लूँगा और उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा भी दूंगा। हाँ तो उसका नाम है दलालेर गीत, ऐसा उनका एक भजन है, इसमें उन्होंने लिखा है कि नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, यहाँ पर उन्होंने नाम का हाट लगाया हुआ है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनकी सहायता करूँगा और कस्टमर को लेके लेके आऊँगा, मेरे दलाली भी लूँगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। सबसे पहले जो भजन हमने गाया था ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वो भजन भी ठाकुर भक्ति विनोद जी ने लिखा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस धाम गोद्रु में जो आता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है और जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो आप सबको इसकी भी बधाई हो। हरे कृष्ण। यहीं पर सुरूबी गाय ने मार्कंडेय मुनि को बचाया था, मार्कंडे मुनि को 7 कल्प तक जीवित रहने का वरदान मिला था। 1 कल्प के बाद में बहुत बड़ा प्रलय होता है, उस जब 1 कल्प खत्म हुआ, बहुत भयंकर प्रलय हुआ, तो उसमें वो हवा के लहरों में, जल की समुद्र के लहरों में इतने उनको कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा वरदान क्यों मांगा। हाँ, इतने हजारों साल तक वो पानी में बहते रहे, तड़पते रहे, भूखे प्यासे, दर्द में। तब सुरभि ने उसको देखा और उनको खींचकर इस द्वीप पर लेके आई। वो इस द्वीप पर लाकर मार्कंडेय मुनि जो थके हुए थे, कल्प के अंत में जो प्रलय होता है उसके कष्ट से परेशान थे, उस मार्कंडेय मुनि को सुरभि ने अपना दूध पिलाकर सशक्त कर दिया, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शरीर से भी। और दोनों ने मिलकर यहां पर भजन किया। सुरभि गाय ने उसको भजन सिखाया, मार्कंडेय मुनि ने यहां पर भजन किया उसके साथ में बैठकर। तो उन दोनों के सामने श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए और दोनों पर उन्होंने प्रेम की कृपा की। वही यह स्थान है जहां पर मार्कंडेय मुनि आनंद विभोर होकर रोने, हंसने, गिरने, पड़ने, विशुद्ध होने लगे। इस तरह से बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, लेकिन जिसके घर में आए हैं उसका भी 10 मिनट क्यों ना हो परिचय कराना बहुत जरूरी है। हाँ, ये उनको भी खुशी होगी, इसलिए इस धाम का महात्म्य मैंने बताया। लेकिन अगर यहाँ पर उनके बिना, उनके बोले बिना यहाँ से जाएंगे तो हमारा कथा अधूरा हो जाएगा। तो ये है स्वानंद सुखदा कुंज, ललिता देवी का जो गोलोक धाम में जमुना किनारे पे कुंज है, वो यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है। ये उनका घर है, ये उनकी समाधि भी है। ये कमल मंजीरी के अवतार थे, भगवान की अनंत सखियाँ हैं। उस सखियों की असिस्टेंट जो होते हैं उनको मंजरी कहते हैं। एक एक सखी होती है उसकी 3-3 करोड़ मंजरियां होती है। 3 प्रधान मंजरी होती है, बाकी करोड़ों, एक एक सखी के पास में 3-3 करोड़ असिस्टेंट गोपियां होती है। तो उसमें से एक मंजरी जो है वो कमल मंजरी, ये कमल मंजरी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के लीला में संबित करने के लिए ठाकुर भक्ति विनोद के रूप में प्रकट हो गए। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब सन्यासी थे, लेकिन सभी सन्यासी आचार्यों में एक ही आचार्य ऐसे हैं जो गृहस्थ थे। इनका विवाह 2 माताओं से हुआ था, मतलब 2 स्त्रियों से हुआ था जो हमारे लिए माता हैं। पहली पत्नी का देहांत हो गया तो दूसरी पत्नी भगवती देवी के साथ उनका विवाह हुआ, उनको 6 संतान प्राप्त हुई। पेशे से ये मैजिस्ट्रेट थे, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब लॉयर थे। हाँ, न्यायाधीश हो गए थे, न्यायाधीश। और ब्रिटिशों के समय पर इनका जन्म हुआ था, मतलब 1834 के आसपास उनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं ना ब्रिटिश लोग कितने गर्विष्ठ थे, उन्होंने कभी भारतीय लोगों को ऊपर आने नहीं दिया, कोई भी इंपॉर्टेंट पद कभी भी उन्होंने इंडियन लोगों को नहीं दिया। लेकिन ऐसा समय होते हुए भी ब्रिटिशों के ज़माने में इन्होंने उनके गवर्नमेंट में जो टॉप मोस्ट पोजीशन मिल सकता है वो प्राप्त कर लिया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता सबसे पहले थे वो। उसके बाद भी जगन्नाथपुरी के उड़ीसा क्षेत्र में भी वो मजिस्ट्रेट बने। उस समय उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जो सेवा का स्टैंडर्ड था उसको बहुत काफ़ी बढ़ाया। भगवान को जो भोग लगाने का नंबर था वो 64 आइटम तक भोग लगाने का उन्होंने आइटम बढ़ाया, मंदिर के सेवाओं में वृद्धि की उन्होंने बहुत। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अभी मैं ज़्यादा समय ब्रिटिशों की सेवा नहीं करना चाहता तो मैं रिज़ाइन कर लूँगा, तो उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया। पहले उन्होंने बोला कि मुझे नवद्वीप धाम में ट्रांसफ़र दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया कि अभी हमको ट्रांसफ़र आपको देंगे, और उनको कृष्णानगर, जो आपने शायद देखा होगा, पता नहीं रास्ते पर होगा, यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का अंतर है, ऑन द वे फ्रॉम कलकत्ता टू मायापुर वो आता है बीच में, कृष्णानगर यहाँ का मेन टाउनशिप है, यहाँ से पहला टाउनशिप। तो कृष्णानगर में उनको DM बनाया, कलेक्टर। और उनकी एक शर्त थी कि मैं अपना जीवन जो है भी कृष्ण भावना के लिए, गौरांग महाप्रभु के प्रचार के लिए ही व्यतीत करूँगा, इसलिए मुझे काम नहीं करना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं केवल पार्ट टाइम काम करूँगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा आप सोच सकते हैं, कृष्णानगर से यहाँ तक रेलवे लाइन खींचा उन्होंने केवल 1 यात्री के लिए, 1 इंजन, 1 बोगी और 1 यात्री, ठाकुर भक्ति विनोद, उनका नाम था केदारनाथ दत्त। वो तो गुरुजी बनने के बाद टाइटल मिला उनको ठाकुर भक्ति विनोद, उनका वैसा नाम ऑफिशियल नाम था केदारनाथ दत्त। तो केदारनाथ दत्त का इतना सेवा का महिमा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको रिकग्नाइज किया, और इनकी इम्पोर्टेंस महत्व को देखते हुए उनके ऑफिस से लेकर घर तक रेलवे लाइन खींचा। आज दुर्भाग्य से मैंने देखा कि वो रेलवे लाइन यहाँ पर रद्द हो गई है। अभी पिछली बार जो लोग आए थे, घर के सामने रेल का दर्शन भी उन्होंने किया, कृष्णानगर से यहाँ तक अप एंड डाउन ओनली वन पैसेंजर। फिर वो अभी तो तीन बोगी थी अभी उसके बाद में, लेकिन आज मैंने इंक्वायरी किया ना रेल लाइन भी है ना गाड़ी चल रही है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ब्रिटिश लोगों ने कभी भारतीय लोगों को ऊपर आने नहीं दिया, ऐसे समय पर ठाकुर भक्ति विनोद जी के लिए इतनी बड़ी सुविधा उन्होंने पैदा की। तो यहाँ पर जब वो रहते थे तो इस जगह पर उनके गुरुजी, उनके शिक्षा गुरु, उनके पुत्र ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, सारे महान आचार्य बैठकर यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करते थे। और एक विशेष बात यहाँ पर जाने के पहले आपको देखना है, जो मैं यहाँ बताऊँगा आगे, अगली बात आगे बताऊँगा, कि इस घर के पहले माले पर खड़े होकर कई बार वो जप किया करते थे। तो उनको दो बार दृष्टांत हुआ यहाँ पर। एक बार दृष्टांत ये हुआ कि उनको यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बस खड़ी अपनी, उस दिशा में उन्होंने जलांगी के पार देखा तो उनको रात के समय में बहुत दिव्य सुवर्ण प्रकाश दिखाई पड़ा पहली रात को। अगली रात को जब वापस आए तो उनको दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा, उसके साथ में ये भी दिखाई पड़ा कि काले पीले गेहूं वर्ण के और हर देश के अलग अलग ऊँटे ऊंचे नाटे जितने भी लोग, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले सभी प्रकार के ऊंचे नीचे लोग जो है वो एक साथ मिलकर हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब उन्होंने भविष्यवाणी की कि उस जगह पर जहां पर उन्होंने प्रकाश देखा वो जगह थी मायापुर अंतरद्वीप, जहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, वहाँ पर उन्होंने प्रकाश देखा। तब उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगले सदी में एक सेनापति भक्त आएगा भगवान का, और वो विश्व भर हरिनाम का प्रचार करेगा गौरांग महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में, और उसके प्रभाव से अलग अलग देशों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले सब लोग यहाँ पर एकत्र होंगे और बिना भेदभाव के हाथ ऊपर उठाकर गौरांग महाप्रभु का जय जयकार करेंगे। और दूसरा उनको ये दर्शन हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, उनको अनुभूति हुई कि उसी जगह पर है, क्योंकि महाप्रभु के जन्म स्थान लोप हो चुके थे। महाप्रभु जी 48 ईयर्स की लीला समाप्त हो गई, महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए, उसके बाद 100 साल तक गंगा जी ने इस क्षेत्र को व्याप्त कर दिया था। उस क्षेत्र को व्याप्त करने के बाद में महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा अवतार समाप्त होने के बाद में 100 साल गंगा जी मेरे क्षेत्र को धक्के रखेगी, उसके बाद गंगा जी पीछे हटेगी, फिर मेरा धाम प्रकट हो जाएगा और फिर ये स्थान नए नए प्रकट हो जाएंगे। और तब नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी बलराम जी के अवतार, उन्होंने कहा था कि एक समय पर यहाँ पर अद्भुत मंदिर आएगा अंतरद्वीप में, उसका दर्शन ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इस छत पर खड़े होकर अपने, क्या कहते हैं उसको, डे ड्रीम, यानी कि दिन का जो होता है दृष्टांत, हाँ दिवा स्वप्न कह सकते हैं उसको, और रात के समय पे हुआ लेकिन उनके जगते हुआ, उनको नींद में स्वप्न नहीं आया था, तो उसमें उन्होंने उस अद्भुत मंदिर का दर्शन भी यहाँ पर खड़े होकर किया था। और आप सब लोगों का भाग्य इतना जोरदार है कि आज वो अद्भुत मंदिर आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। ये नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है, ये ऐसा मत समझना कि हम इस्कॉन के डिवोटी हैं और इस्कॉन ने हमें दीक्षा लिया है इसलिए हम अपना इतिहास को, भविष्यवाणी को एडजस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, हाँ ये शास्त्र का प्रमाण है इसके लिए, ये हमारी भावनाओं का, हम लोग भावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो जो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने यहाँ पर दर्शन किया है, जो अद्भुत मंदिर का दर्शन उन्होंने यहाँ खड़ा होकर किया था, और वो समय के अनुसार भी प्रकट होगा। उन्होंने भविष्यवाणी ये भी की थी कि इस मंदिर से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा पूरे विश्व के सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आज भी चैतन्य महाप्रभु का अवतार छन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार है, सब लोगों को पता नहीं महाप्रभु जी कौन है, लेकिन इस मंदिर के प्रभाव से पूरे विश्व में हर एक देश और गांव में कृष्ण नाम का प्रचार होगा और महाप्रभु के चरणों की सेवा सभी जीवों को प्राप्त होगी। तो आप ऊपर जाइए, देखिए वहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद जी का बेडरूम है, एक गैलरी है ऊपर, और उसमें ही उनके पुत्र जो हैं ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव हैं। परंपरा कैसी है, हमारे गुरु उनके गुरुदेव प्रभुपाद जी, जिनकी समाधि अभी इस्कॉन मंदिर में आप दर्शन करेंगे दो दिन के बाद, उनके गुरुदेव थे ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी। और ठाकुर भक्ति सिद्धांत भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र थे, उनके छह पुत्रों में से एक पुत्र थे ठाकुर भक्ति सिद्धांत। उनका वैसे नाम था बिमला प्रसाद दत्त, बिमला प्रसाद केदारनाथ दत्त। तो सभी लोग यहाँ पर रहते थे, भगवती देवी, ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी, ठाकुर भक्ति विनोद जी, बाकी सारे पुत्र उनके, उनके गुरुदेव यहाँ पर आते थे, भोजन करते थे, डिस्कस करते थे कैसे प्रचार करना है। और ठाकुर भक्ति विनोद जी सबसे पहले गौड़ी संप्रदाय के आचार्य हैं, जिनका जो लेखन है सबसे पहले इंग्लैंड में पहुंचा, टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये किताब भी सबसे पहले सात समुद्र पार करके लंदन के सभागृह में पहुंची। उसके बाद में उनके पुत्रों ने प्रचार किया, उसके बाद में प्रभुपाद जी ने जाकर सब विश्व में प्रचार किया। तो आप सबको बधाई है, आप सब लोग ठाकुर भक्ति विनोद जी को प्रणाम कीजिए, उनकी कृपा को याचना कीजिए, ऊपर जाकर दर्शन कीजिए, फिर हम यहाँ से अगले स्थान में चले जाएंगे। सब लोग बोलेंगे ठाकुर भक्ति विनोद महाशय की।